ओ ओ ओ विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण अंतर्गत 32वां श्लोक। उपदेशमवाप्येवम् आचार्यात्तत्त्वदर्शिनः पञ्चकोशविवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम् अन्नं प्राणो मनो बुद्धि आनन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्मृतिं व्रजेत् स्यात् पञ्चीकृतभूतोऽत्थो देहस्थूलो अन्नसंज्ञकः लिंगे तु राजसहि प्राणै प्राणः कर्मेन्द्रियै सह सात्विकैधीन्द्रियैः साकम् विमर्शात्मा मनोमयः तैरेव साकम् विज्ञानम् मयोधीर्निश्चयात्मिकाः कारणे सत्त्वमानन्द मयो मोदादिवृत्तिभिः तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् पञ्चकोशविवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते। तो प्रसंग चल रहा है जीवात्मा जो प्राज्ञ से तेजस बना और तेजस से विश्व बना। लोक प्रसिद्ध भाषा में जीवात्मा कहते हैं। वह परागदर्शी हो गया, विश्व बनने के बाद वह बाहर के पदार्थों को देखने वाला बन गया। केवल देखने वाला बनता तो हर्जा नहीं था, प्रत्येक तत्वबोध विवर्जित हो गया। मेरा सबसे अंदर का असली स्वरूप ब्रह्म है ये बात भूल गया, क्योंकि ब्रह्म से ही वह प्राज्ञ बना था, प्राज्ञ से तेजस बना था और तेजस से विश्व बना था। उसको अपना जो शुरुआती स्वरूप है उसको नहीं भूलना चाहिए था। व्यक्ति घमंडी कब होता है? जब किसी विशेष पद में पहुंचता है और वहां पहुंचने से पहले वाले अपना अवस्था अपनी अवस्थाओं को भूल जाता है, तब वो घमंडी हो जाता है। मेरे से बड़ा, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं। आद्यो अभिजनमान अस्मि कोऽन्य अस्ति सदृशो मया, यक्षेदास्यामि मोदिस्य इति अज्ञान विमोहित। इस प्रकार से अज्ञान के वश में होकर व्यक्ति सम्मोहित होता है और अपने पूर्व स्वरूप को भूल जाता है। ये विश्वनाम के जीवात्मा के साथ यही हुआ, ते परागदर्शी हो गया। तब क्या करने लगा, तो कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुञ्जते। कोलू का बैल हो गया, है ना, कोलू का बैल हो गया। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुञ्जते। आज उसकी अवस्था क्या है, कैसी है, तो बोले नद्याम कीटा इवावर्तात आवर्तांतरमासुते ब्रजंतो जन्मनो जन्म लवंते नैव निर्वृतिम। एक भमरी से दूसरे भमरी में पड़ता है, दूसरे से तीसरे में पड़ता है। इस प्रकार से अनादिकाल से वो जन्म और मृत्यु रूपी भमरी में पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है। इससे छुटकारा उसको नहीं मिल रहा है। तो फिर इसका उद्धार होगा कब? इसी जन्म मृत्यु कर्म और कर्मफल भोग, जन्म मृत्यु कर्म और कर्मफल भोग, इस क्रम में ज्ञातपूर्वक या अज्ञातपूर्वक कोई ऐसा उसने शुभ कर्म कर ली, सत्कर्म कर ली, पुण्य कर्म को शुभ कर्म नहीं मानना, शास्त्र सम्मत शास्त्र विहित पुण्य कर्म को शुभ कर्म नहीं मानना। यहां सत्कर्म शब्द का अर्थ होता है निष्काम कर्म, इसलिए शास्त्र में जगह जगह कर्म त्रिविधम शुक्ल कृष्ण और मिश्र इस प्रकार से बताया। एक शुक्ल कर्म है यानी पुण्य कर्म है, एक कृष्ण कर्म है यानी पाप कर्म है, और तीसरा मिश्र कर्म है, पाप पुण्य मिला हुआ है। यहां सत्कर्म का अभिप्राय एक चौथी प्रकार का कर्म जो केवल चित्त शुद्धि का हेतु, ईश्वर अनुग्रह का हेतु, सद्गुरु कृपा का हेतु। चित्त शुद्धि का हेतु, ईश्वर अनुग्रह का हेतु और सद्गुरु कृपा के हेतु, ये तीनों का हेतु एक ही कर्म है, वह है निष्काम कर्म। कर्मासक्ति और फलाशक्ति रहित होकर किए हुए कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। वही कर्म चित्त शुद्धि का, कर्मकर्ता को चित्त शुद्धि का साधन भी बनेगा, वही कर्म ईश्वर प्रसन्नता के लिए हेतु भी बनेगा और सद्गुरु अनुग्रह का कारण भी बनेगा। यहां प्रसंगतः वह उसका ये कर्म सत्कर्म सद्गुरु अनुग्रह का कारण बन गया, तो सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनोद्धृता, करुणा वरुणालय दयालु गुरु के द्वारा उसको उस नदी प्रवाह से उस कीड़े को बाहर निकाल दिया। उस प्रवाह से बाहर निकल गया तो अब वो बार बार भंवरी में नहीं पड़ेगा, प्रप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम मिन्ति यथा सुखम। कैसे विश्रांति को प्राप्त होता है तब आगे बताते हैं। उपदेशम अवाप्यवम सद्गुरु द्वारा एवं माने आगे कहे जाने वाले उपदेश को प्राप्त करके आचार्य तत्वदर्शिनः उपदेशम एवं उपदेशम अवाप्य। तत्वदर्शी गुरु के आचार्य के द्वारा वह इस प्रकार के उपदेश को प्राप्त करके किस प्रकार से उपदेश पंचकोश विवेक का उपदेश प्राप्त करता है उसको। पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं परम। जब वो विश्व नामक जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के सत्कर्म के प्रभाव से आचार्य का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है तो आचार्य विशेष अनुग्रह करके उसको पंचकोश विवेक की प्रक्रिया से उपदेश करते हैं। पंचकोश विवेक रूपी प्रक्रिया से जब उपदेश करते हैं तो वह पंचकोश को विवेक करता है। विवेक शब्द का अर्थ हमने शुरू में कहा था पृथककरण, अलग करना। पंचकोश को जानना इतना नाम विवेक का अर्थ नहीं है। पंचकोश से पंचकोश में फंसे हुए आत्मा को निकालना, इसी का नाम अलग करना, इसी का नाम पंचकोश विवेक है। जिसको जिससे निकालोगे, जिससे निकालना है उसको भी जानना जरूरी है, जिसको निकालना है उसको भी जानना जरूरी है। फेंकना किसको है और रखना किसको है, दोनों को जानना जरूरी है ना। फेंकने को जान लिया तो खाली सबको जो रखना था उसको भी फेंक दोगे, रखने को जाना तो जिसको फेंकना था उसको रखने लग जाओगे। क्या फेंकना है, क्या रखना है, क्या हटाना है, क्या रखना है, इसी का नाम तो विवेक है। हाँ? तो पंचकोश विवेक है ना। जब पंचकोश विवेक का ज्ञान प्राप्त करता है और अलग करने लगता है तब वह विवेकी लवन्ते निर्वृत्तिं पराम। परम निर्वृत्ति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तब जिन जिन कोशों में वो फंसा था उससे अलग होते ही वह अपने पूर्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, अपने असली स्वरूप में पहुंच जाएगा। वो उपाधि में जाकर उपाधि में फंसा हुआ था, उपाधि से अलग होते ही वो निरुपाधिक भाव में पहुंच जाएगा। तो उसी को पराम निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति माने मोक्ष, लवन्ते प्राप्त कर देता है। अब पंचकोश विवेक जो कहा था तो जिज्ञासु ने पूछ लिया कि महाराज ये पंचकोश क्या है। बोले विश्व की उपाधि जो कारण शरीर, तेजस की उपाधि जो सूक्ष्म शरीर ना, प्राज्ञ की उपाधि जो कारण शरीर, तेजस की उपाधि जो सूक्ष्म शरीर और विश्व की उपाधि जो स्थूल शरीर, इन तीन शरीर को ही पांच कोश के रूप में वेदांत ने प्रतिपादन किया है। विश्व की उपाधि अन्नमय कोष, तेजस की उपाधि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष, प्राज्ञ की उपाधि आनंदमय कोष। विश्व की एक उपाधि है, एक कोष है, प्राज्ञ की एक कोष है, लेकिन तेजस की तीन तीन कोष है। ये कैसे महाराज जी, इसको समझा दीजिए महाराज। अन्न पहले कोषों का नामकरण बता दिया, अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदचेति पंचते, ये पांच कोष हैं, कोषों का नाम है ये पांच। अन्नम माने अन्नमय कोष, प्राणो यानी प्राणमय कोष, मनो मनोमय कोष, बुद्धि विज्ञानमय कोष, आनंद आनंदमय कोष च इति पंचते। कोशास्तैतैरावृत स्वात्मा विस्मृत्य संस्मृतिं व्रजेत। अब ये चिदाभास वेदांत ने जिसको जीवात्मा कहा, ये तैतेही कोशाह, इन पांच कोषों में जिस जिस कोष में ये पहुंचता है उसी उसी कोष के साथ वह आत्म तादात्म्य कर लेता है। आत्म तादात्म्य का अर्थ होता है कोष के धर्म को अपना धर्म मानना और अपने धर्म को कोष का धर्म मानना, इसको तादात्म्य कहते हैं। अन्य का धर्म अन्य में मानकर निश्चय करना, इसी को तादात्म्य कहते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे अयोगोलकम, किसी लोहे के गोले में अग्नि का संचार हुआ हुआ होगा और उस अग्नि के चलते हुआ लोहा लाल होगा, तो बताने वाला बोलता है देखो आगे आग का गोला है, ये शब्द प्रयोग कर रहा है। आग का गोला कभी भी संभव है ही नहीं, क्योंकि अग्नि गोल हो ही नहीं सकती है। अयो पिंड, ये तो ठीक है, लेकिन अग्निपिंड गलत है। लोहे का गोला है ये कहता तो ठीक था, अग्नि का गोला कह रहा है वो। गोल होना लोहे का धर्म है, लाल होना अग्नि का धर्म है। अब वो कह क्या रहा है, अग्नि का धर्म गोल में आरोप कर रहा है, गोल के धर्म को अग्नि में आरोप कर रहा है। लोहे के गोल धर्म को अग्नि में आरोप कर रहा है और अग्नि के लाल को लोहे में आरोप कर रहा है, तो फिर अयोगोलकम। इसी को कहते तादात्म्य, तादात्म्य। जैसे अनेक उदाहरण है, कोई किसी के हाथ पकड़कर खींचता है तो कहने वाला क्या कहता है कि उसने मुझे पकड़कर खींच लिया। तुम्हें पकड़कर खींचना किसी की बस की बात है? है, तुम किसी के पकड़ में आने वाले चीज हो, व्यक्ति हो, तुम्हें पकड़कर खींचना किसी की बस की बात है? संभव नहीं। तुम्हें पकड़ना संभव नहीं है तो तुम कैसे कह रहे हो कि मुझे पकड़कर खींचा? जब ये वाक्य बोलता है तो वह अपनी जो उपाधि है हाथ शरीर, उसका अवयव हाथ, उस उपाधि को ही मैं कह रहा है। पकड़ना, हाथ का पकड़ना संभव है, तुम्हारा पकड़ना संभव नहीं। तब फिर हाथ के साथ तादात्म्य करने के कारण हाथ को ही मैं कह रहा है, और इसलिए कहता है कि मुझे उसने पकड़कर खींचा। हाथ पकड़कर शरीर खींचा कह देता तो ईमानदारी थी, है ना? हाथ पकड़ा और शरीर को खींचा, तब तो व्याख्या ठीक थी, लेकिन व्यक्ति ऐसा कहता नहीं है। इसलिए जो सत्य है वही कहे और वही करे, तब तो जीवात्मा को कोई अनर्थ होगा ही नहीं भाई। और जो सत्य नहीं है उसको कहता है और उसको करता है, यही तो उसके अनर्थ का कारण है। कोशास्तैते आवृतः स्वात्मा विस्मृत्या, ये देखो, तब तक कोशों के साथ तादात्म्य करता है। क्यों? अपने असली स्वरूप को वह भूल गया। स्वात्म विस्मृत्य, असली स्वरूप को भूल गया मतलब अपना जो नहीं नहीं प्राज्ञमी नहीं ब्रह्म। इसने यात्रा तो ब्रह्म से आरंभ की थी ना, मूल तो ब्रह्म है, समझे नहीं? मूल ब्रह्म है, तम प्रधान प्रकृति मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, उसका नाम प्रज्ञ हो गया। और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञ का प्रतिबिंब पड़ा, उसका नाम तेजस हो गया। और व्यष्टि स्थूल शरीर में तेजस का प्रतिबिंब पड़ा, विश्व हो गया। तो विश्व ने तेजस को भूल लिया, तेजस ने प्राज्ञ को भूला, और प्राज्ञ ने ब्रह्म को भूला। परिणाम क्या हुआ? तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ तीनों ने ब्रह्म को भूला। यही हुआ कि नहीं? विश्व के द्वारा तेजस की विस्मृति, ब्रह्म की ही तो विस्मृति है। तेजस द्वारा प्राज्ञ की विस्मृति, ब्रह्म की ही विस्मृति है। और प्राज्ञ द्वारा ब्रह्म की विस्मृति भी ब्रह्म की विस्मृति है, है? तो यही कहते हैं, कोशास्तैतैरावृत स्वात्मा विस्मृत्य संस्मृतिम व्रजेत। संस्कृत भाषा में कोश शब्द का अर्थ होता है खोल, कवर, आप लोग बोलते हो ना, कोश, खोल बोलते हिंदी में, तकिया का खोल, रजाई का खोल, गद्दे का खोल बोलते हो कि नहीं? इसी प्रकार से क्या कहना होगा? आत्मा का खोल कहने पड़ेगा कि नहीं? बोलो, शरीर को क्या कहोगे? शरीर को क्या बोलोगे? बोलो, आत्मा का खोल। ये देख लो, बात तो एक ही चीज है। जैसे तकिया का खोल, रजाई का खोल, गद्दे का खोल, तो कहा गया कि आत्मा का खोल क्या है? तो आत्मा का कुल शरीर, ये पंचकोश ही आत्मा का खोल है। तो इसीलिए जब आप दैनंदिन व्यवहार में अपने घर में तकिया का खोल को धोते हो तो उसी तरह आत्मा के खोल को भी धोना पड़ेगा कि नहीं। हमारी उमा आत्मा के खोल को धोने के लिए जा रही है नर्मदा किनारे, और क्या, नहाने के लिए जा रहे हैं नर्मदा। कोश, अब ये कोश शब्द का अर्थ जैसे संस्कृत भाषा में कौशेय वस्त्र, कौशेय वस्त्र कहते हैं, एक कपड़ा होता है वो कौशेय होता है। इसका मतलब क्या है कौशेय वस्त्र माने? कोश से धागा तैयार करके उस धागे से बना हुआ वस्त्र को कौशेय बोलते हैं। आप जिसको सिल्क बोलते हो ना, आप जिसको सिल्क बोलते हो कि नहीं, वो कॉटन तो है ही नहीं। और जो आजकल तो मुझे लगता है कि सिंथेटिक सिल्क भी बनता हो, लेकिन सिंथेटिक जो सिल्क है वो सिल्क नहीं है, वो कौशेय नहीं है, केमिकल से बना है। वास्तव में वो एक कीड़े के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आजकल गांव गांव में ये अभियान चलता था, रेशम के कीड़े बोलते हैं ना, रेशम के कीड़े, रेशम की खेती। और रेशम की खेती कैसे करोगे? वो शहतूत नाम का एक वनस्पति है, शहतूत, क्या बोलते हैं, शैतूनार, हिंदी में शहतूत बोलते हैं, शैतून, वो वनस्पति है। उसके फल लगते हैं, इतने इतने लंबे लंबे होते हैं, पकता है तो काला होता है, पहले हरा होता है, पकने से पहले लाल होता है और पकने के बाद काला होता है। उसको जब पकता है बाहर से देखते हैं तो कीड़ा जैसे ही लगता है, लंबे कीड़े जैसा ही, लेकिन वास्तव में जो शैतून के जो रेशम के कीड़े हैं वो सफेद होते हैं, वो पकने के बाद काला होता है। फर्क इतना ही है, साइज एक ही है। वो कीड़े को ये शैतून के जो पात है बहुत ही प्रिय है, और शैतून के पात में रसा होता है, लेसा होता है, उसको आप लोग कूटोगे, पानी में डालकर कूटोगे तो जैसे नीम का पत्ता कूटोगे लेसा निकलता है ना, लस लस, जैसे भिंडी को काटकर आप तुम लोग धोने लगते हो तो कैसे निकलता भिंडी, चिकास, लेसा, रेसा अलग चीज, लेसा अलग चीज। तो वही पात खाता है वो, और उसके शरीर की बनावट ऐसा है, ईश्वर की देन है, वह उस खाए हुए पत्ते को पचाने के बाद फिर मुख से वह निकालता है, निकालता है तो टुकड़ों टुकड़ों में, पीस पीस में नहीं निकलता है, वो कंटिन्यू निकलता ही रहता है, वो मुख की तरफ से खाता जाता है और नीचे से वह निकलता रहता है, निकलता ही रहता है। फिर उसको कहां अपने शरीर में लपेटता है, उसी में लुढ़कता रहता है, लपेटता ही रहता है। आप लोग धागा निकाल के फिर हाथ में लपेटते हो कि नहीं? इस तरह वो अपने शरीर में लपेटता है, खाया जाता है लपेटे जाता है। परिणाम क्या होता है? लपेटते लपेटते वह उसी के अंदर बंद हो जाता है। खाने के लिए मुंह खुला नहीं रहता है, लपेटने के लिए कोई खुला छिद्र नहीं रखता, तो अंदर ही अंदर वह सब लपेटा जाता है। तो इतना बड़ा गोला हो जाता है, वो सफेद होता है। तो ये धागा निकालने वाले उस गोले को बड़े आराम से कीड़े के सहित खौलते हुए पानी में डालकर खूब पकाते हैं। पकाने के बाद वो धागा मजबूत होता है, वो टूटेगा नहीं। बिना पकाए धागा निकालने लगो के वो कोस से वो सब टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ी सावधानी से उसको निकालकर पानी में पकाओगे तो पकने के बाद धागा इतना मजबूत होता है कि उसको खींचो तो पूरा का पूरा इतना लंबा निकलता है वो धागा। तो उसी धागे से कपड़े तैयार करते हैं। तो उन वस्त्रों को कौशेय वस्त्र, कोस से तैयार हुआ हुआ धागा और उस धागे से तैयार हुआ हुआ कपड़ा, इसलिए कौशेय, कोस माने गोला। तलवार का जो खोल होता है उसको भी कोस बोलते हैं संस्कृत भाषा में, म्यान, उसको भी संस्कृत भाषा में कोस। सब मिलाकर कोस का अर्थ होता है ढकने वाला, आवरण। तो यहां ये जीवात्मा के पांच कोष हैं और ये जीवात्मा पांच कोष के अंदर बंद पड़ा है। लेकिन कोष को अपना स्वरूप मानता है, इसलिए उसको कोई खास परेशानी अनुभव नहीं होता। कोष ही मैं हूं कहता है वो, कोई बात बोलते हैं। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंद चेति पंचते कोशास्तैराभृत स्वात्मा विस्मृत्या संस्मृति व्रजेत। उन्हीं कोष से आत्मा को विस्मृति, आत्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को भूलकर उन कोष के चलते वह संस्मृति व्रजेत, संसार की यात्रा करता है। दो चीजें, संसार को, संसार की यात्रा, आत्मा को अपने स्वरूप को भूले बिना, अपने स्वरूप को याद करते हुए, अपने स्वरूप को पहचानते हुए, जानते हुए कि मेरा असली स्वरूप ये है, ये मानते हुए संसार की यात्रा करे तो उसके लिए संसार बाधक नहीं है। लेकिन आत्मा विस्मृति पूर्वक संसार यात्रा, उसके लिए संसार दुखदायी हो जाएगा। क्योंकि ज्ञानी जो संसार यात्रा करते हैं आत्मा विस्मृतिया नहीं करते, और अज्ञानी संसार यात्रा करता है, अपने स्वरूप को भूलकर संसार की यात्रा करता है। पांच कोषों का नाम बताया था और पांच कोष तैयार होते कैसे हैं, अब एक एक कोष की उत्पत्ति की प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले अन्नमय कोष बनता कैसे है? स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देह स्थूलो अन्न संज्ञक। पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ हुआ जो स्थूल शरीर है, जिसको अन्नमय कोष कहते हैं, ये पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है। पंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत, इसी को लेकर तत्तरी उपनिषद में बड़ा सुंदर प्रक्रियावत इसकी व्याख्या हुई है। ये पंचकोश की अवधारणा तत्तरी उपनिषद से विद्यारण्य मुनि जी ने लिया है, इसका मूल अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद है। तस्मद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोरग्ने अग्ने आप अद्व्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधय औषधिभ्य पुरुष सबा ऐसा पुरुष हो। इसी को ही गीता में अन्नाद भवंति भूतानि, ये सारे के सारे संसार के जितने भी जीव हैं ये अर्जुन सब के सब अन्न से पैदा होते हैं, अन्न से। अन्न से जो पैदा होने वाला जीव है वह भगवान श्री कृष्ण जीव की पैदाइश तो मानते नहीं, इसलिए अन्नमय कोष की पैदाइश बता दिया। अन्न से जो बनता है वो अन्नमय कोष बनता है, अन्न विकार है ना, ये तो अब सामान्य व्यवहार में आप लोग जानते ही हो। माता पिता के द्वारा खाया गया जो अन्न है उस अन्न का रस रक्त मज्जा वसा आदि प्रक्रियागत सातवां जो धातु है वो वीर्य रज होता है। आज खाए गए अन्न का 40 दिन के बाद रज और वीर्य बनता है, यह शास्त्र में अन्यत्र स्पष्ट लिखा है। रस तो आज खाया आज ही बन गए, दो घंटे के अंदर रस बन जाएगा, समझे नहीं। अन्न जो खाते हो वो अन्न अंदर जाने के बाद वैश्वानर अग्नि के द्वारा परिपक्व होने के बाद रस अलग बन जाएगा और स्थूल भाग अलग हो जाएगा। ये सारी सिस्टम रस को रूप में परिणत करने के लिए वैश्वानर अग्नि दो घंटे के अंदर अपना काम कर लेता है। इसलिए शुगर टेस्ट करने वाले क्या कहते हैं, खाना खाओ, खाना खाने के बाद दो घंटे के बाद टेस्ट कराओ। इसका मतलब दो घंटे में वो पूरी की पूरी वो अन्न में जो रस है उस रस को निकालकर व्यान वायु को दे देगा और व्यान वायु उस रस को पूरे शरीर में व्याप्त करा लेगा। ये देखो तो कितनी ग्लूकोज प्रोडक्ट हुआ, अन्न में से कितना ग्लूकोज निकाला तुम्हारे शरीर ने वो पता लगेगा। अब इसका मतलब रस बने बिना ग्लूकोज की उपलब्धि तो होगी नहीं। अब वो रस फिर रक्त बनेगा, रक्त बनने के लिए 24 घंटा लगता है। इसी तरह वो रक्त फिर मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, वसा बनेगा, करते करते रज और वीर्य के रूप में परिणत होने के लिए पूरे 40 दिन लगते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। वही रज और वीर्य के दोनों के सम्मिश्रण से गर्भाशय में पहुंचने के बाद जो खोल तैयार होगा, जो कोष तैयार होगा, उस कोष का नाम, उस खोल का नाम होगा अन्नमय कोष। वो होगा पंचीकृत पंचमहाभूत से, क्योंकि अन्न तो पंचमहाभूत से बनेगा, अन्न पंचमहाभूतों से बनने के कारण उसका जो कार्य होगा रज वीर्य भी पंचमहाभूतात्मक होगा और उससे बना हुआ जो शरीर है वो भी पंचमहाभूत होगा। और अन्न अन्न जाता नहीं जीवंती अन्नम यत् प्रेत्य भी संविशंती, ये देख लो अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम यत् प्रयन्ति विसंविशन्ति। उपनिषद में भी अन्न से ही सभी भूतों की उत्पत्ति बताई और उसी उपनिषद के वाक्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते समय अन्नाद् भवन्ति भूतानि कर दिया, उसी को यहां अन्नमय कोष कहा। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देह स्थूलो अन्न संज्ञक। इसलिए अन्नमय को सप्त धातु से युक्त है। लिंगे तो राजसई प्राण ही प्राण कर्मेन्द्रिय सह। लिंग शरीर में जो कोष है, जो प्राण है, वो प्राण किससे उत्पन्न हुए? बोले प्राण राजसही। ये प्रक्रिया पहले आप लोग सुन चुके हो। अपंचीकृत पंचमहाभूत के समष्टि रजोगुण से पंच प्राण तैयार हुए थे, वेष्टि रजोगुण से पंच कर्मेन्द्रिय हुए थे, तो उसको मिलाकर यहां पांच प्राण और पंच कर्मेन्द्रिय दस अवयव मिलाकर एक प्राणमय कोष तैयार हुआ। लिंगेतु राजस ही प्राण ही प्राण कर्मेन्द्रिय ही सह। कर्म इंद्रिय सह प्राण प्राणमय कोश। पांच प्राण प्राणापान समान बयान उदान वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये दस मिलकर प्राणमय कोष तैयार हुआ। प्राणमय कोष अन्नमय कोष के अंदर रहता है और ये प्राणमय कोष अन्नमय कोष के ऊपर जीवन में हेतु है। वास्तव में अन्नमय कोष को जीवंत बना के रखने वाला तत्व प्राणमय कोष है। इसलिए उपनिषद में अन्नमय कोष के साथ तादात्म्य करने वाला अन्नमय पुरुष तस्माद् वा एतस्माद् अन्नमयात् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, तस्माद् वा एतस्माद् अन्यो अंतर आत्मा मनोमय, तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात् अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय, तस्माद् वा एतस्माद् अन्यो अंतर विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। इस तरह तत्तीय उपनिषद में पंचकोश की चर्चा हुई है। सात्विकैधि इंद्रिय ही साकम विमर्शात्मा मनोमय। प्रक्रिया वही है। अपंचीकृत पंच महाभूत से अलग अलग आकाशादि भूतों के सत्वगुण से पांच ज्ञानेन्द्रिय और समष्टि सत्वगुण से अंतःकरण, इसकी उत्पत्ति का वर्णन कर चुके थे, पहले कर चुके हैं, उसी को फिर स्मरण कर लो। तो विमर्शात्मा मनोमय वृत्ति वेदा सा द्विधा, अंतःकरण को दो भेद कहा था कार्य करने की क्षमता के चलते, एक को नाम मन दूसरे का नाम बुद्धि। विमर्श करने के कारण उस भाग को मन कहा, निश्चय करने के कारण उस भाग को बुद्धि कहा था। यहां सत्वगुण से उत्पन्न हुए हुए पांच ज्ञानेन्द्रिय और विमर्श काम करने वाला एक मन, इच्छे वस्तु को मिलाकर मनोमय कोष तैयार हुआ। तो तीन कोष हो गए ना, अन्नमय कोष पंचीकृत पंचमहाभूत से अन्न अंड और अन्न से बना हुआ कोष अन्नमय कोष, और अपंचीकृत पंचमहाभूतों से व्यष्टि रजोगुण से पंच कर्मेन्द्रियां, समष्टि रजोगुण से पंच प्राण, दोनों मिलाकर रजोगुण के भाग को मिलाकर प्राणमय कोष। अपंचीकृत पंच महाभूत के व्यष्टि सत्वगुण से पांच ज्ञानेन्द्रिय और समष्टि सत्वगुण से अंतकरण, अंतकरण का दो भेद मन और बुद्धि, पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन मिलाकर मनोमय कोश तैयार हुआ। तैरेव साकम विज्ञानमयो धीर निश्चयात्मिका। तैर साकम मन वही पांच ज्ञानेन्द्रिय के सहित निश्चयात्मिका जो मन बुद्धि है अंतकरण का भाग, इच्छे को मिलाकर विज्ञानमय कोश हुआ। मनोमय कोश में और विज्ञानमय कोश में फर्क क्या हुआ? पांच ज्ञानेन्द्रिय दोनों कोश में बराबर हैं, मनोमय कोश में भी वही पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं और विज्ञानमय कोश में भी वही पांच ज्ञानेन्द्रियां। फिर दो कोश को अलग अलग क्यों बताए? फिर बोले फर्क यह है कि एक में सिर्फ मन है, एक में सिर्फ बुद्धि है। जिस कोश में बुद्धि की प्राधान्यता होगी उसको विज्ञानमय कोश कह दिया गया, जिस कोश में मन की प्राधान्यता होगी उसको मनोमय कोश कह दिया गया। पांचवां कोश है कारणे। कारणे माने कारण शरीर, कारणे का अर्थ कारण शरीर, जो प्राज्ञ की उपाधि है, समझे नहीं? प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, तीन कोश तेजस की उपाधि है। अन्नमय कोश विश्व की उपाधि है, आनंदमय कोश प्राज्ञ की उपाधि है। कारणे कारण शरीर में सत्वम आनंदमय, मलिन सत्व था ना उसमें, सत्व तो था लेकिन वह सत्व कैसा था? मलिन था। तो उस सत्व में जो आनंदता है उसके लिए उसके चलते उसको आनंदमय कोश कहा गया। तीन प्रकार के सुख की वृत्ति, बाहर वस्तु सापेक्ष है, वहां वस्तु निरपेक्ष है। मैंने बताया था ना, इष्ट वस्तु दर्शन मात्र से होने वाली प्रसन्नता को प्रिय बोलते हैं। इष्ट वस्तु अधिकार में लेने के बाद होने वाली प्रसन्नता को मोद कहते हैं। इष्ट वस्तु के भोग काल में होने वाली प्रसन्नता को प्रमोद कहते हैं। तो जागृत में प्रिय मोद प्रमोद वस्तु सापेक्ष है, कारण शरीर में यानी सुसुप्ति में प्रिय मोद प्रमोद वस्तु निरपेक्ष है। वस्तु के बिना भी वह प्रिय मोद प्रमोद वहां अपने आप ही उपाधि के माध्यम से प्राप्त होने के कारण उसको आनंदमय कोश कह दिया गया है। कारणे सत्वमानंद मयो मोद आदि वृत्ति भी, मोद प्रिय और प्रमोद ये वृत्ति किससे युक्त है? वह कारण शरीर यानी आनंदमय कोश। तत्त कोशेस्तु तत्त आत्मतादात्म्य, आत्मा जो है उन कोशों में तादात्म्य करने के चलते वो आत्मा भी तत्तन मयो भवेत। तत्तरी उपनिषद ने कहा अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य किया तो आत्मा का नाम अन्नमय पुरुष हुआ, समझे कि नहीं? है कार्य उपाधि से आत्म तादात्मक करने के कारण उस कार्य उपाधि वाला पुरुष को क्षर पुरुष कहा, कारण उपाधि के साथ आत्म तादात्मक करने के कारण उसको अक्षर पुरुष कहा, और दोनों उपाधि से अलग हुए हुए पुरुष को उत्तम पुरुष का स्वाध्याय में उसका प्रसंग चल रहा है। इसलिए अन्नमय कोष के साथ तादात्मक अन्नमय पुरुष, प्राणमय कोष के साथ तादात्म्य करने के कारण प्राणमय पुरुष, मनोमय कोष के साथ आध्यात्म करने के कारण मनोमय पुरुष, विज्ञानमय कोष के साथ आध्यात्म करने के कारण विज्ञानमय पुरुष, आनंदमय कोष से आध्यात्म करने के कारण उसको आनंदमय पुरुष के रूप में उपनिषद ने वर्णन किया है। लेकिन सही रूप में पुरुष इन पांचों कोष से भिन्न है। अब ये पांच कोष से वो पुरुष वो अलग हो कैसे? पांचों कोष से उस पुरुष को अलग करना है, अलग करें कैसे? युक्ति से अलग करना पड़ेगा। युक्ति से माने विचार से अलग करना पड़ेगा, क्रिया से नहीं, विचार से अलग करना है। वो विचार की प्रक्रिया, कोषों से आत्मा को अलग करने की जो विचार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया कहते हैं। उस पर फिर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।